श्रीमद् भगवद गीता थारू अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 5। नचमत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभ्रन्ना च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक यानी भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल श्लोक है और इसको थोड़ा समझने के लिए हम आचार्य की कमेंट्री को देखेंगे, फिर प्रभुपाद के तात्पर्य को देखेंगे। सबसे पहले श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री को देखते हैं और वह कहते हैं कि बावजूद इसके कि सब कुछ भगवान में स्थित है, उनमें स्थित नहीं है। भगवान में स्थित नहीं है क्यों? क्योंकि भगवान सभी से पूरी तरह से स्वराट है। तो व्यक्ति कहेगा कि ये तो विरोधाभास हो रहा है। आपने अभी पिछले श्लोक में कहा था कि आप पूरे जगत में व्याप्त हैं और जगत के आश्रय भी आप ही हैं। तो भगवान उत्तर देते हैं कि यही उनका योगम ऐश्वर्य, मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। ये मेरी अद्भुत कार्य कौशल है जिसके द्वारा वो हो पा रहा है जो कि संभव नहीं है। और इससे अधिक आश्चर्यजनक वस्तु को भी देखो। ये बात आश्चर्यजनक ये है कि भगवान भले ही सब कुछ सभी जीवात्माओं के भरता हैं, उनको उनका मेंटेनेंस करने वाले हैं, भूतभृन हैं इस जगत में, और उनके रक्षक भी हैं, भूत भावना है, लेकिन जो उनका आध्यात्मिक शरीर है, आध्यात्मिक विग्रह है, स्वरूप है, वो उन जीवात्माओं में स्थित नहीं रहता, वो उसमें नहीं रहता। वैसे भगवान में शरीर और आत्मा का भेद नहीं होता, जैसे कि, लेकिन ये खाली समझाने के लिए है, जैसे बोला जाए कि राहु का सिर। अब राहु और राहु के सिर में कोई अंतर नहीं है, और इसी प्रकार से भगवान कृष्ण में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान कृष्ण में और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर दिखाने के लिए सब बोला गया है। तो अर्थात इसका अर्थ ये है कि जीव जो है वो शरीर को धारण करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, हम अपने शरीर को धारण करते हैं, रक्षा करते हैं, और इस जगत में आसक्त हो जाते हैं जब तक इस शरीर में रहते हैं। अच्छा, भगवान बावजूद इसके कि जीवात्मा को धारण करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, और ये एक तरह से भगवान का ये भौतिक शरीर है सभी जीवात्माओं से युक्त, फिर भी भगवान इसमें नहीं रहते, क्योंकि भगवान इसमें आसक्त नहीं होते। अब गीता इस संबंध को आप ऐसे भी कह सकते हैं, कभी कभी घर में कोई व्यक्ति होता है, घर में एकदम निराशक्त होता है, तो कहते हैं अरे ये तो घर में रहता ही नहीं है, इसका मन तो कहीं और है, उसकी आसक्ति कहीं और होने के कारण उस संबंध को इस तरह से बोला जाता है कि ये तो व्यक्ति रहता ही नहीं है, ये तो घर में रहते हुए भी नहीं रहता, ऐसा बोलते हैं। उसी अर्थ में समझना चाहिए। श्री बलदेव विद्याभूषण इस प्रश्न को उठाते हैं अपनी कमेंट्री में कि भाई को व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि भाई आप ये चौथे श्लोक में आपने बताया कि इस जगत को आप धारण कर रहे हैं, तो बड़ा थक जाते होंगे। तो भगवान उत्तर देते कि नहीं, जो वस्तु में मैं सृजन करता हूँ उनका, वो मुझ में नहीं है। जैसे कि एक पानी पानी के मटके में रहता है, उस तरह से नहीं है। फिर वही व्यक्ति कहेगा कि अरे आपने तो अभी पिछले श्लोक में कहा था कि सब कुछ आपके अंदर है, और इस श्लोक में आप कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है। तो भगवान कहते हैं कि ये मेरा योग ऐश्वर्य है, ये अद्भुत योग है। और योग का अर्थ है कि जिस साधन से वो साध्य हो जाए जिसे प्राप्त करना या साधित करना असंभव है, बहुत मुश्किल है। तो योग शब्द का अर्थ यहां पे ये है कि भगवान का दिव्य शरीर जिसमें अचिंत शक्तियां हैं, और उसमें एक शक्ति ये है जिसे कहते हैं सत्य संकल्पता शक्ति, जिससे भगवान की इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता है बिना किसी प्रयास के। इस चीज को भगवान और समझाते हैं और कहते हैं कि मैं भूत भृन हूँ, यानी कि मैं सभी जीवात्माओं का रक्षक और पालक हूँ, लेकिन मैं उनसे मिलता नहीं हूँ, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मन उनका कल्याण करता है, भूत भावन है, लेकिन इस चीज को मैं अपनी सत्य संकल्पता शक्ति से करता हूँ। मुझे अपने खुद का प्रयास नहीं लगाना पड़ता, अपने चिन्मय शरीर को कोई प्रयास नहीं लगाना पड़ता, ये चीज भगवान बता रहे हैं और उसको श्रुति से प्रमाण दे रहे हैं। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रम असौ विधृतौ वितिष्ठतः। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्वै अपृथिव्यौ विधृते तिष्ठतः। तो कह रहे हैं कि हे गार्गी, जो चंद्र चंद्रमा और सूर्य है वो उनकी ही आज्ञा से अपनी स्थिति में रहते हैं, उनकी ही आज्ञा से स्वर्ग और धरती अपनी स्थिति में रहते हैं। ये बृहद अरण्य के उपनिषद का कोटेशन आचार्य देते हैं। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान अपनी शक्ति के द्वारा सब जगह सबका पालन कर रहे हैं और पालन कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, खुद उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए सब कुछ उन पर आश्रित होते हुए भगवान उसमें नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का देखेंगे। भगवान का कथन है कि सभी कुछ सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है, मतस्थाने सर्वभूतानि, इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। तो उम्मीद है कि अब तो आप समझ गए होंगे, भगवान की सत्य संकल्पता शक्ति के द्वारा सब कुछ क्रियान्वित होता है, भगवान को खुद से प्रयास करने की जरूरत नहीं। कभी कभी हम एटलस, एक रोमन देवता को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं, वह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वी लोक को धारण किए रहता है। तो ये चीज आप देख रहे हैं कि आचार्य कमेंट्री सही है कि व्यक्ति प्रश्न करेगा कि भगवान बहुत थक गए हैं, बहुत कठिन कार्य है उनके लिए। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिससे कृष्ण इस सृजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हों। तो ये क्लियर है। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं किंतु वे पृथक रहते हैं, सारे लोक अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न हैं, वे पृथक स्थित हैं। अतः भगवान कहते हैं कि यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। तो ये भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य, याद है ना, हमने चर्चा किया था कि योग ऐश्वर्य का अर्थ ही होता है, योग मतलब अचिंत्य शक्ति। तो भगवान के ही शक्तियों पर पूरा जगत आश्रित है, लेकिन भगवान का स्वरूप जो है पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, वो भौतिक नहीं। वैदिक कोश निरुक्त में कहा गया है, युंजते नेना दुर्घटेषु कार्येषु। परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। स्वयं एक तथ्य है अर्थात हमारा संकल्प तथ्य नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे सारे संकल्प सत्य हो जाते हैं, लेकिन भगवान का जो भी संकल्प होता है वो पूर्ण होके ही रहता है। उनको किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता और उनके संकल्प को कोई काट नहीं सकता। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। किस रूप में? कि वो सत्य संकल्प हैं, तथ्य में समझ में आना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं वे नहीं कर पाते, प्रायः जो हम जो चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते, किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि ये सब कैसे हुआ। इस चीज़ को आप देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद के उदाहरण से कि प्रभुपाद जी अमेरिका गए और कैसे, उन्हें कुछ पता भी नहीं था कि कैसे प्रचार होगा, क्या होगा, लेकिन भगवान की कृपा से, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भगवान ने इच्छा करी, इस कारण से पूरे जगत में, पूरे विश्व में कुछ ही समय में इतना पूरा प्रचार हो गया। और ये कैसे हुआ ये भी समझना बड़ा चिंता है। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं, यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता हैं किंतु वे सृष्टि को स्पर्श नहीं करते। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य की रोशनी से पूरी जगत में वनस्पतियां उगती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन सूर्य डायरेक्ट उनका स्पर्श नहीं करता, अपनी शक्ति के द्वारा पालन करता है। उसी प्रकार से भगवान इस जगत को अपनी शक्ति के द्वारा पालन करते हैं, सीधे उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है। जैसा हमारे भौतिक मन में और स्वयं हमें भेद होता है क्योंकि वे परमात्मा हैं, यानी वो स्पिरिचुअल हैं, उनमें ये द्वैतता नहीं है। जैसे हम में और हमारे मन में अंतर है, हमारे शरीर में अंतर है, लेकिन भगवान में ऐसा नहीं होता। साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं किंतु सामान्य वस्तु अपनी शक्तियों के द्वारा, किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वे साकार रूप में किस तरह उपस्थित होते हैं, क्योंकि अचिंत्य है, भौतिक बुद्धि के द्वारा समझा नहीं जा सकता। लेकिन हमने पिछले श्लोक में सुना था कि जब व्यक्ति नाम जप करता है, भक्ति करता है, तो भक्ति के प्रभाव से व्यक्ति समझ पाता है। वे भौतिक जगत से भिन्न है तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है, यानी वो पूरी तरह स्पिरिचुअल है, उसके बावजूद भी हर भौतिक वस्तु उन पर आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योगम ऐश्वर्यम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। अब अगर आप कोई प्रश्न करते हो कि हम ये कैसे समझें, तो हमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि बात शब्द आ रहा है योग शक्ति, योगम ऐश्वर्य, योग के अचिंत्य है। समझने का प्रयास यही होता है कि हम समझ नहीं सकते और उसको स्वीकार कर ले, जैसा कि भगवान भगवद गीता में बताते हैं। तो ये भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य है जिसके द्वारा भगवान इस तरह के कार्य करते हैं। हरे कृष्णा।